Now this session is you will learn how we combine the science and spirituality. Because this session tell you what is the use of the Raja Yoga meditation. Through this session, Dr. Satish Guptaji conducted one of the largest research in the world, how we open the coronary blockages by adopting healthy lifestyle and Raja Yoga meditation without using angioplasty and bypass surgery. I just gave a brief bio data of Dr. Satish Guptaji. Dr. Satish Gupta, he is the Director of Cardiology and Medicine, JWM Global Hospital Research Center, Mount Abu. He did MBBS from Maulana Azad Medical College, Delhi, and MD from the Lady Harding Medical College. He is a MD, PhD, DNB guide. He is a visiting professor of medicine and cardiology in Sime State Medical University, Kazakhstan. And he has awarded so many awards, okay? But I just narrate the few. One of the Lifetime Achievement Award for the outstanding contribution in the field of preventive cardiology by the His Excellency President of India, Dr. APJ Abdul Kalam in 2006 at Rashtrapati Bhavan. Next, he was again awarded by the India's President Excellency Smith Pratibha Patilji for excellence in cardiology on 22nd September 2008 at Rashtrapati Bhavan. He is also awarded for the Award of Excellence in 2011 in Preventive Cardiology and Cardiac Rehabilitation by the then Health Minister Gulam Nabi Azad in 2011. He was also awarded the International Award for Excellence in Medicine for the 21st century by United Nations Organization in 2005. He has so many awards in his credit, but the most famous, he is the principal investigator and coordinator of the landmark research study, that is a coronary artery disease regression through the three-dimensional health and happiness program. So now we are going to start this, and this is a combination of the science and spirituality with the scientific proof and data and with the life proof. We have the two Dilwalas. Dilwalas means we said that not heart patient. Heart patient are known as the Dilwala here. So Dilwala, after this session, they will narrate their experience about how they open their coronary blockage by this adopting the healthy lifestyle. So over to Dr. Satish Gupta.
Om Shanti. Respected chairpersons. And my dear colleagues, आप सोचते होंगे मैं प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में कैसे आ गया. मैं वॉज एट मैं दिल्ली से ही मैंने MBBS MD किया, कार्डियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन किया. एंड आफ्टर दैट इन वन ऑफ द प्रीमियर हार्ट इंस्टीट्यूट्स वेयर आई वॉज वर्किंग, तो आई यूज्ड टू सी दैट पीपल कम विथ heart disease, they come with heart attack, myocardial infarction, we manage them, and after managing, in those days, 94-95, we used to do angiography next day, after stabilizing the patient, and then we used to see that they have a block, we used to put the stent, and next time, after 3 months, 6 months, the patient will come back with another MI, or unstable angina. Then we repeat the angiogram and find out that stent is blocked, or stent has not blocked, but other vessels have got blocked. So we'll advise them to redo angioplasty, repeat angioplasty, or a bypass surgery. Many patients used to tell me that, doctor, last time, because the disease had started coming in early, previously it used to come in 60s and 70s, it used to come rich people, affluence class of the society before up to 1960. But then in 1990s, disease had started coming early. Early means in the 40s and even 30s. So then everyone was concerned. Those days conferences, international national conferences, that the talk used to be, the discussion used to be the disease is coming early. What should be done? So then So those days we used to discuss such cases in our different meetings, clinical meetings. And the patient used to tell, the last time we had to sell our house, now what should I sell now? That motivated me. After my MBBS, I did my IAS also. And during IAS, I had taken psychology as a optional subject. So I had a lot of interest in psychology. Used to study every patient from psychological point of view. And those days, during those 94-95, various journals, Circulation, American College of Cardiology and other journals, it was seen that many studies were there. Kafi sari aise study the jinme bataya gaya. People who have got type A behavior. Type A means all the time under pressure of time, pressure of work, pressure of perfection. And especially cynical type A behavior, finding fault with others, sensitive type A behavior, and hostile type A behavior, the very dangerous behaviors, where the disease can, the prevalence of heart disease can be 3 to 4 times more than the general population. Similarly, people who get anger, you can measure the anger content, and then people with more anger, they had 3.5 times more heart attacks. People with depression had 5 times more chances of developing heart attacks. People who were not able to ventilate their mind, their stresses, they had much more number of heart attacks. Similarly, many other psychological factors, psychosocial factors, ki kafi researches unme journals mein thi, to unhi to usko dekh ke mujhe laga ke nahi, I had developed a topic, stress and heart disease. I should give in IMA ki jo one DMA, Delhi mein tha, Delhi mein DMA, Delhi Medical Association ki different meetings mein, I should talk about it. In one of the meetings on 6th of March 95, I had given a talk in one of the IMA meetings, and where one of the scientists from DRDO was there, he listened to my talk, and then he shared with Dr. Kalam. 9th of March, I had a meeting with Dr. Kalam, and when I shared with Dr. Kalam, he said, Dr. Gupta, if you do this research, because I was practicing Raja Yoga meditation from 1986 when I was at AIMS, Delhi. At that time I came in connection with the Brahma Kumaris, and it was my wife was sitting behind me on the scooter, and my son, who was just 1 year and 8-9 months old, he was in front of me on the scooter. And she said there was Brahma Kumari Center in the South Extension. It was written Gateway to Heaven. My wife told me that, see this, here it is written Gateway to Heaven, and you are taking me to Gateway to Hell. We are going to see a movie, Nagina. Rishi Kapoor and Sridevi. So he said, no, we don't want to go here. We'll go here. तो उस दिन से हम अंदर गए साउथ एक्सटेंशन के सेंटर में, और तब से अंदर ही हैं। नाउ लास्ट 38 इयर्स इन द हेवन ओनली। और फिर मैंने जब ये रिसर्च का प्रोग्राम बन गया, डॉक्टर कलाम साहब ने कहा, डीआरडीओ कोलैबोरेशन में एक रिसर्च प्रोग्राम बनाया गया, और वो रिसर्च प्रोग्राम हमने मौलाजार मेडिकल कॉलेज और जीबी पंत हॉस्पिटल को साथ में लिया, ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई एंड जेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल साथ में लिया, और बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद एंड यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को साथ में, टर्शियरी कार्डियो सेंटर 3 को साथ में लिया, रिसर्च प्रोग्राम बनाया और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को सबमिट किया, और उसको करने के लिए फिर मैं 15 अप्रैल 95 को माउंट आबू शिफ्ट हो गया विद माई फैमिली. कैन यू इमेजिन, 9th मार्च को डॉक्टर कलाम साहब से बात हुई, इस बीच में रिसर्च प्रोग्राम बना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को सबमिट हुआ, और 15th अप्रैल आई हैड ज्वाइंड हियर, लेफ्ट दिल्ली. आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली, brought up in Delhi, did my all studies from Delhi. Sirf sawa mahine mein mereko ye lagan lagi ke mujhe yahan aana hai, ye research yahan ke karni. That is about this. And then after coming here, we started one to one, logon ko sikhana shuru kiya, and then 27 December 97 ko program launch hua, aur fir uske baad फरवरी 98 में प्रोग्राम शुरू हुआ. तो मैं आपसे शेयर करूंगा पहले कि उन दिनों में क्या फेस कर रहा था. ये हमारा माउंट आबू का हॉस्पिटल, जहां अप्रैल 95 में मैंने ज्वाइन किया, और नीचे एक ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर बना है वहां पर, अभी आजकल मैं वहां देख रहा हूं. अभी मैं आपसे कुछ शेयर कर रहा हूं, कुछ चीजें कि अगर आप देखेंगे, आई थिंक आई विल टेक, अभी आप देखेंगे ये एक पेशेंट है जो कि रोहतक का, ये तो मतलब ये जो I'm informing you that it is a 2015 survey in four cities, in the major four cities in the country. And 2015 number of Indian patients with CAD was about 62 million. And that is 6.2 crore लोगों को heart disease, documented heart disease थी. और उस समय अगर कहते हैं for every patient there is at least one patient, one or two patients. We do not know. No one knows who has how much heart disease. It comes suddenly. तो उसके हिसाब से देखें तो लगभग 15 करोड़ लोगों को भारत में हार्ट की बीमारी इस समय होनी चाहिए, 15 से 20 करोड़ लोगों को. और आउट ऑफ दोस 62 मिलियन 37 मिलियन बर बिफोर द एज ऑफ बिलो द एज ऑफ 50 इयर्स, दैट मीन्स मोर देन 60% पेशेंट्स ऑफ कॉरोनरी हार्ट डिजीज आर बिलो द एज ऑफ 50 इयर्स. एंड इन दैट ईयर 29 लाख पीपल हैड डाइड बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक. And out of which 15 lakhs were below the age of 50 years. So it is not a disease of old people. Now it's a disease more of young and middle-aged group, right? So I just shared with you some of the cases. Jo aajkal main recently abhi humare paas aaye. But this person is hypertensive, diabetic, smoker, sedentary lifestyle. He's an industrialist. Usko 2007 mein angioplasty karani padi. 2010 में बंद हो गई, एक और नया ब्लॉक हुआ तो 10 में फिर दो स्टेंट लगे. 2014 में फिर तकलीफ हुई, उसको बाईपास कराना पड़ा. और दो बाईपास कराने के तीन महीने के बाद ही उसको फिर दोबारा तकलीफ हुई, सिम्टम्स आए, टीएमटी पॉजिटिव हो गया, ह्यूस्टन यूएस में चला गया. उसने एंजियोग्राफी की, सारे ग्राफ्ट बंद हो गए, ग्राफ्ट बंद हुए, उसने वापस जितने भी ग्राफ्ट सबकी एंजियोप्लास्टी हो गई. और उसके बाद उसके लगभग 4 महीने के बाद फिर तकलीफ हुई, फिर हमारे पास आया. ये 2014 की बात है, तब से लेके आज 10 साल हुए, इज एब्सोल्युटली सिम्टम फ्री, तो एकदम बढ़िया है. इसी पेशेंट के एंजियोग्राम देख सकते हैं आपके, सारे के सारे देखिए, इनके सारे ग्राफ्ट बंद हो गए. मतलब सो एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास इज नॉट अल्टीमेट, इट इज ओनली पेलिएशन, राइट. सिमिलरली एक दूसरा पेशेंट है, दिस इज अंदर साइड ऑफ स्पेक्ट्रम. इस व्यक्ति को, ये भी 47 ईयर्स का है, हरियाणा का ही है, जींद का है. इसको हाइपरटेंशन नहीं है, डायबिटीज नहीं है, स्मोकर नहीं है. वेट इसका 65 kg है, हाइट 167 सेंटीमीटर है. मतलब ही डजंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ सो कॉल्ड दिस फैक्टर ऑफ हार्ट डिजीज. डेली वॉक करता है, आरएसएस का वर्कर है ना, आरएसएस में था. इसने 2013 में एंजियोप्लास्टी कराई, 14 में बंद हो गई, दो स्टेंट और लगा दिए, 15 में बाईपास हो गया. और उसके बाद दो तीन महीने के बाद फिर तकलीफ हो गई, तब से फिर हमारे पास है, तब से रेगुलर लगभग दस साल से ठीक है. एक और प्रॉब्लम भारत में क्या है, पीपल हैव गॉट डिफ्यूज डिजीज. डिफ्यूज डिजीज मीन्स द एलईडी इज सो मच ब्लॉक्ड, एलसीएक्स इज मतलब पूरा एलसीएक्स बंद है, ब्रांचेस बंद है, आरसीए बंद है, पीडीए बंद है, पूरी की पूरी आर्टरीज बंद है. देयर इज नो प्लेस फॉर बाईपास और एंजियोप्लास्टी. सच नंबर ऑफ पेशेंट्स आउट ऑफ 100, 54% पीपल हैव सच डिजीज इन इंडिया. दे हैव गॉट डिफ्यूज डिजीज, नॉट ऑपरेबल. इन कंपेरिजन वेस्ट इज ओनली 21%. So we have a big problem of diffuse disease. ये तो, and I have got one person from Delhi. She is a director of an NGO. She has now, by now she has 16 stents and one bypass. Still she was not able to walk 100 meters when she came to us. And now she is absolutely fine. अभी 5-6 दिन पहले एक patient देखा, एक नीचे conference थी, आयुर्वेदा conference थी ना, जो आयुर्विज्ञान की, उसमें एक पेशेंट था, उसके 22 स्टेंट लग चुके थे अब तक, उसको 22 स्टेंट्स इन 9 ईयर्स, है ना, 9 ईयर्स में 22 स्टेंट लग चुके थे. तो वो चाहते हैं कि हम, अभी भी उनकी हालत अच्छी नहीं है, तो दे वांट टू कम फॉर द प्रोग्राम, जो हम 3D हेल्थ केयर प्रोग्राम रन करते हैं. तो आज मतलब हम एंजियोप्लास्टी तो लोग करना अच्छी बात है, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी इज वेरी गुड, बट इन ए क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना पेशेंट्स इट इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना. ऐसे दूसरे पेशेंट्स हैं, काफी सारे पेशेंट, आप मेरे पास तो बहुत सारी हिस्ट्रीज हैं, अगर मैं करूंगा तो पूरा एक घंटा उसी में बीत जाएगा. तो हाँ, मोर देन 11,000 एंजियोग्राफीज वी हैव डन, मोर देन 11,000 पेशेंट्स. सो व्हाट एवर वी आर डूइंग, एंजियोप्लास्टी, बाईपास और स्टैटिन्स यूज कर रहे हैं, व्हाट एवर वी आर डूइंग, इट इज ओनली पेलिएटिव, इट डज नॉट एड्रेस द रूट कॉज. जेनेटिक फैक्टर्स, मेंटल स्ट्रेस, डाइट, एक्सरसाइज, wrong sleep, tobacco use, and other risk factors, conventional risk factors, hypertension, diabetes, obesity, dyslipidemia, family history of CAD, whatever, those factors are responsible. And it does not address, the modern medicine which we are doing is, it does not address the root cause. Our treatment is only one dimensional. It addresses only the body. While we know that CAD is a psychosomatic disease, it's a psychosomatic disease, it's a lifestyle disease. And we have a pandemic of heart disease. It's the number one killer in the world, right? India is not different. It only, rather numbers are, in India is more. We get more than 70, we get about 7 to 8 million heart attacks every year. And we hardly do 5 lakh interventions per year. And we cannot afford to do so many interventions in a year. Even if the whole budget, 50 lakh crore if we spend, still it will not be able to, we will not be able to cover. And this is only palliation. There is another patient from US, he has a diffuse disease. Like, we have so many patients from all over the world. And but the various interventions, various trials have shown, like Courage trial, OAT trial, MAS2 trial, they have shown that the interventions, angioplasty and bypass, do not address the root cause. And in stable patients, this is not the treatment of choice. They can be looked after without any intervention. And when you change the lifestyle, you can, it not only prevents or reverses heart disease, but it reverses each and every disease of mind and body. This is what we have seen over the last 26 years. This program is on for last 26 years, more than 26 years, and this is what we have seen. I think I will not look into the figures in US. Just I want to like to show you that this one prize, Nobel Prize in 2009 for aging, healthy aging. They have shown, उन्होंने दिखाया कि अगर हम मेडिटेशन करें, प्रॉपर डाइट लें, लाइफस्टाइल चेंज में स्पेशली अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करें, तो वी कैन चेंज जीन एक्सप्रेशन इन 3 months, राइट? जीन्स एसोसिएटेड सीएडी, कैंसर, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ऑल दीज जीन्स कैन बी डाउन रेगुलेटेड और टर्न्ड ऑफ, एंड हैप्पी जीन्स और प्रोटेक्टिव जीन्स कैन बी turned on by doing meditation, proper diet, and following your lifestyle, a healthy lifestyle, especially your biological clock. So I'll just be sharing with you the results of this trial, with what we have done over last. We call it three-dimensional healthcare. Three-dimensional means it addresses all the three aspects of human being. Three means the spiritual care, the mental care, and the physical care. All the three aspects. And Rajyoga meditative means whatever we are doing is doing meditate. It's a meditative lifestyle throughout the day, 24 hours. It's not morning and evening meditation. Change of consciousness from body consciousness or role consciousness to soul consciousness. And it gives you healthy heart, happy mind, and healthy body. It almost looks after each and every cell of the body, each and every disease of mind and body. So this study we did it as I shared with you in collaboration with DRDO. And 3 tertiary cardiac centers was sponsored by Ministry of Health and Family Welfare. This is, I just mentioned how we went about this study. This study was published in 2011, and in September 2011, and we were informed by the Biomed Lab in US, which is the official body, and they told us in July 2013 that your study over last almost 1.5 years has been most cited, most visited by doctors, researchers and public. That is, out of top 20 studies in the world, your study is number one. And they kept on informing every 3 months, and it continued to be number one up to November 2015, that is 2 years and 4 months. I think this is the largest, maybe one of the few studies which have remained number one for over more than 2 years. And this study was documented by American Heart Association in its scientific statement on meditation and cardiovascular risk reduction. And they mentioned this study that this technique of Rajyoga meditative lifestyle is a useful technique for reversing or for CAD regression, as well as for taking care of its risk factors like hypertension, diabetes, insulin resistance, other factors. But they said we have to go have a bigger study. This study was in 518 patients. Since then we have continued, and we are now, it's more than 11,000 patients. So 26 years of the study has completed, and now we, I think just few days back only, हमने भूमि पूजन किया एक इंस्टीट्यूट का, वो ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट हेल्थ साइंसेज बनेगा, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा, साथ में ही हम उसके साथ ही एक ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल साइंसेज बना रहे हैं, जिसमें हम लोग हार्ट के पेशेंट्स के अलावा, अब ये जो हमने शुरू किया है डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम, ओबेसिटी रिवर्सल प्रोग्राम, फैटी लिवर डिजीज रिवर्सल प्रोग्राम and metabolic syndrome reversal program, different program. Now we have, you know, in future we plan to have a molecular biology lab, and along with that we'll address almost other autoimmune diseases and also inflammatory bowel disease, other diseases of the mind and body as well during this program. I think just to recapitulate for you, mind-body relationship, mind has got four aspects. Mind is not physical, it's a non-physical thing, it's abstract. It has got four aspects. We call it team. Thoughts, emotions, attitudes and memories. And if you have a negative team, each negative emotion and thought or attitude gets converted into a chemical in the hypothalamus. We call it neuropeptides. And these neuropeptides, through the blood vessels, they travel to each and every cell of the body. And every cell has receptors for these neuropeptides. And then what happens, sympathetic overactivity happens, and then stress hormones come in, epinephrine, norepinephrine, cortisol comes in, and then we have stress, fight and flight response, feeling of disease, laziness or lack of energy. And this is what keeps on happening. We have what, 8 organ systems, and they keep on affecting. One of the organ systems from childhood, from the infancy or even the mother's womb is not properly developed, has a problem. We call it target organ. And the maximum effect comes on that organ. Right? Someone it may be heart, someone it may be brain, someone it may be eyes, someone it may be your intestines, someone it may be liver. Different organ systems may be affected. Right? I'm not going to do details of this. And that is how we develop the disease. That is how the gene starts expressing. Right? And on the other hand, if you have a positive team, what happens? Then cells of the brain and body, they release endorphins and cephalins, and parasympathetic activities, feeling of well-being, happiness, pooling of energy. And then that reverses the disease in that very different, whatever the target organ was. I will not go into details of this. Just to recapitulate, our heart has got, you all know about it, coronary arteries, 3 coronary arteries, LMCA, divides into LAD and LCX and different branches. And our right coronary artery. And normal artery and the abnormal artery you can see here. In childhood our arteries are elastic. The blood supply can increase by 6 times. Normally we require 250 ml of blood every minute. But when the arteries are elastic during childhood, you can increase it to 1500 ml per minute. But when with aging and other stress and other factors, the upper arteries start clogging from childhood onwards. And then when the arteries harden up, they become like plastic. They do not respond to physical or mental stress. And then we have that leads to angina, when the blockage is around 70%. Or jab hame hum lagatar hamare andar negative mental tendencies rehti hain, jaldi chinta, gussa, udasi, cynical behavior, hostile behavior, we are not able to ventilate, apni stress ko keh nahi pate. Suna hoga na aapne? अगर दिल खोल लिया होता यारों से तो ना खोलना पड़ता हजारों से, है ना. तो ये बहुत, मैंने देखा पिछले बहुत कुछ सालों में देखा, बहुत 26 साल में देखा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना इज राइटिंग ए लेटर टू गॉड डेली बिफोर गोइंग टू बेड एंड एक्सप्रेस योर माइंड वॉट एवर योर इमोशंस यू हैव एक्सप्रेस वॉट एवर इज हैपनिंग इन योर बॉडी वॉट एवर इज हैपनिंग इन योर फैमिली and whatever is happening in a profession. Express everything. Write a love letter to God. Not a logical letter, but an emotional letter to God. Express every emotion. And you will see that within a week, your angina will disappear. Right? And blocks will start opening up. The disease will start regressing. This is what we have seen. काफी लोगों ने तो मैं जैसे हमारा एम था एक साल पहले दो साल में खोलने का था, फिर एक साल में खोलने का था, उसके बाद छह महीने का रखा, और कुछ लोगों ने नौ हफ्ते में खोल के दिखाया, नौ हफ्ते में रिग्रेशन करके दिखाया, सिग्निफिकेंट रिग्रेशन, एलएमसी 60% और उन्होंने 30% कर दिया। एक एयरफोर्स का पायलट था, उसको निकाल दिया गया था बिकॉज ही हैड एमआई एंड देन टू आर्टरीज वर ब्लॉक्ड, उसको निकाल दिया गया, ही वॉज मेड अनफिट टू फ्लाई। गरीब फैमिली से था, वो हमारे पास आया, डॉक्टर साहब मैं तो नॉर्म अनफिट, आई वॉन्ट टू, मैंने सुना कि आपके यहाँ पे ब्लॉकेज खुल जाते हैं। तो उसने क्या किया, मैंने कहा तीन महीने बाद तुम, तीन महीने बहुत मेहनत करो, दिल से करो, तीन महीने बाद तुम दोबारा रिपीट एंजियोग्राम। उसने क्या किया, नौ हफ्ते पे अपने एंजियोग्राम रिपीट कर लिए, तो उसके ब्लॉक खुल गए थे, वापस गया माई रूम में, उस डॉक्टर ने कहा यू आर फिट, ही स्टार्टेड फ्लाइंग अगेन। तो इट्स अ विल पावर, विल टू बी वेल, वो मेडिटेशन से आती है आपके अंदर, राइट। तो और ये जो मैंने एमआई बता रहा है, एमआई का एमआई कैसे होता है, सडन 100% ब्लॉकेज व्हेन देयर इज अ क्रैक इन द शोल्डर ऑफ द प्लग बिकॉज ऑफ जल्दी चिंता गुस्सा अंदर मन में भरते जा रहे हैं, देयर इज नो वेंटिलेशन, कोई देयर इज नो आउटलेट, तब प्लग क्रैक्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ रप्चर ऑफ द प्लग इज योर स्ट्रेस, एंड वेन इट क्रैक्स इवन ड्यूरिंग स्लीप dreams, when subconscious mind is very heavy, you get terror dreams, then it cracks and then that leads to MI, right? So you can, the block does not lead to a heart attack, it is the clot which leads to heart attack, right? And you can prevent heart attacks, events, coronary events, by doing proper meditation and proper ventilation, right? तो ये तो आपने देखा, इसके बाद हम आप देखते हैं कि ये हमारा कैसे बचपन से ही हमारी आर्टरीज ब्लॉक होना शुरू होती है, एंड दिस हाउ वी डू इंटरवेंशन, स्टेंट लगा देते हैं, बाई स्टेंट भी बंद हो जाते हैं, पहले हमें ये था कि ड्रग इंड्यूसिंग स्टेंट बंद नहीं होते हैं, ओनली 5-10%, नाउ वी आर सीइंग मच मोर देन व्हाटएवर वाज टोल्ड टू अस दैट इवन 20% अप टू 20% स्टेंट्स आर ब्लॉकिंग, इवन ड्रग इंड्यूसिंग स्टेंट्स आर ब्लॉकिंग, और बाईपास तो हम करते हैं, but this treatment is like cutting a tree from above, like every year before drains we do trimming of the trees, right? Hum trimming kar dete hain, fir barsaat ke baad wapis ped hara bhara ho jata hai, because we don't not address the root cause. Jaise mere 16 intervention ho gayi, 22 ho gayi, still patients are not able to walk properly, right? To ye treatment aise, isliye hame bar bar angioplasty, I am not against bypass surgery angioplasty, rather I recommend for especially for people with LMCA disease. बाकी जहां तक है अगर स्टेबल एंजाइना है तो हम उसको मैनेज करते हैं उसको इस प्रोग्राम में। तो इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है, इस प्रोग्राम में हमने इसे मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च प्रोजेक्ट जिसमें सभी लोग कार्डियोलॉजिस्ट भी रहे, एंडोक्रोलॉजिस्ट भी रहे, फिजियोलॉजिस्ट रहे, क्लिनिशियंस रहे, फिजियोलॉजिस्ट रहे, न्यूट्रिशनिस्ट रहे, फिटनेस एक्सपर्ट्स और स्पिरिचुअलिस्ट रहे, साइकोलॉजिस्ट रहे, और हम सब ने मिलकर यह प्रोग्राम किया, और डॉक्टर कलाम वॉज वन ऑफ द कोऑर्डिनेटर्स ऑफ द स्टडी, उन्होंने बड़ा इंटेंसली एक एक चीज को ऑब्जर्व किया और देखा, पर्सनली 5 बार देखने के लिए आए, पेशेंट से मिलने के लिए आए माउंट आबू में, और एक एक पेशेंट से मिलकर बात करते थे। आबू हेल्थ माउंट आबू ट्रायल तो हमने पब्लिश किया, आबू हेल्दी हार्ट ट्रायल अंडर पब्लिकेशन, इसे रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, और इनमें क्या है कि हमने दोनों में रिजल्ट सुनो, सभी पैरामीटर सेम है, वही जैसे हम लोग इंफॉर्मेशन कंसेंट लेते हैं, कैडिवलेशन फाइल दोनों के लिए बनाई गई, साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया गया, पूरे पैरामीटर्स लिए गए, और उसके जो हमने इन 7 दिन का इन हाउस प्रोग्राम ये हमने रखा कि हर पेशेंट को उसकी वाइफ के साथ आना है, या पेशेंट अगर वाइफ है तो हस्बैंड को साथ में आना है, और वाइफ हस्बैंड आना है, नो पेशेंट इज अलाउड टू कम विदाउट स्पाउस, जड़ को साथ में लाना है, ठीक है ना, रूट कॉज को साथ में लाना है ना, जब तक रूट कॉज को ठीक नहीं करेंगे तो बीमारी ठीक नहीं हो सकती, समझ रहे, क्योंकि जब तक दोनों नहीं बदलेंगे तब तक बीमारी कैसे बदलेगी, दोनों मिलजुल के बीमारी बनाते हैं ना, और दोनों मिलजुल के ही बीमारी ठीक कर सकते हैं, ये हमारा इस प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट। कुछ लोग अनमेरिड होते हैं तो उनको तो फिर अलग बात है, उनके साथ कोई ना कोई अटेंडेंट आता है, बाकी तो अदरवाइज हम साथ में लाता है, इवन किसका तलाक भी हो जाता है, डाइवोर्स भी होता है, उसको बुला के लाओ वापस, है ना, तो मैं फोन करता हूँ फिर उनको, मैंने कहा ठीक है मैं आपका हस्बैंड को ऐसा हुआ है फॉर 7 डेज ओनली, और मैं देखा 7 दिन साथ रहते हैं दोबारा शादी हो जाती है फिर उनकी, ऐसा भी बहुत लोगों का हुआ है, क्योंकि जीवन को समझ जाते हैं, है ना। जीवन हाथी के बजाय जीवन साथी बन जाए। पहले जीवन हाथी है तभी तो सेपरेशन होता है, एक दूसरे के बहुत भारी हो जाते हैं। जब साथ में रहना सीख जाते हैं फिर जीवन साथी बन जाते हैं। बेसिक डिफरेंस दोनों में यही था कि मेडिकेशन वॉज सेम, डाइट शेड्यूल वॉज सेम फॉर बोथ द ग्रुप्स, एक्सरसाइज शेड्यूल वॉज सेम, ओनली डिफरेंस वॉज मेडिटेशन। एक जो हमारा इंटरवेंशनल ग्रुप था उसको हम राजयोग मेडिटेशन दिया इन स्ट्रक्चर्ड वे, प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड वे। बाकी जो कंट्रोल ग्रुप था उसको हमने कहा आप जो भी कर रहे हो, प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, प्राणायाम करते हो, या नमाज पढ़ते हो, चर्च में जाते हो, वट एवर, गुरुद्वारा में जाते हो, जहां भी जाते हो और अच्छे से जाओ, बट याद रखो जल्दी नहीं करनी, चिंता नहीं करनी, गुस्सा नहीं करना, डेली वेंटिलेट करना है, एक्यूरेगा। इसमें सबकी हमने ईजी भी किया था, हार्ट रेट वेरिबिलिटी भी किया टू फाइंड आउट सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक टेक्टिव एक्टिविटी, स्ट्रेस हार्मोन भी किए गए, एपिनेफ्रिन नॉरेफ्रिन, डोपामिन लेवल्स, मेलाटोनिन लेवल्स सलाइवा में किया गया, और कॉर्टिसोल लेवल 8 AM 4 PM इन द यूरिन एंड ब्लड, दोनों DRDO ने साथ में मिलकर किया सारा काम। मैं अपना सीरोटोनिन लेवल्स, एंडोर्फिन लेवल्स भी, तो ये सारे लेवल्स हमने स्टडी किए, Day 1, Day 7 किया। हमारे 80% पेशेंट्स थे जो DBD डिजीज के थे, 20% पेशेंट्स लगभग एज सिंगल वेसल डिजीज के थे। स्टडी एनालाइज वर डिफरेंट, DRDO को भी ICMR ने किया और एक इंडिपेंडेंट हमने एक और स्टेशन कराया, सो देयर इज नो बायस। और एंजियोग्राफी डिफरेंट पैरामीटर्स को डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने एंड किया था, फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स अलग, साइकोलॉजिकल DIPR से हमने कोलाबोरेशन किया था, उन्होंने खुद इंटरवेंशन भी आके की, जो भी हमने अलग अलग लोग थे अलग DRDO के डिफरेंट इंस्टीट्यूट से तो उनको साथ में लिया था। एंजियोग्राफीज को भी कोडिंग कर इन इंटरप्रिटेशन CSI ने टीम बनाई थी और CSI का प्रेसिडेंट वॉज खुद इसमें इन्वॉल्व थे, ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द इंडिपेंडेंट पैनल, उन्होंने खुद। और ये जो स्टडी रिजल्ट्स में देखा गया कि जो पेशेंट्स आल्मोमीटर चलने में प्रॉब्लम थी वो दे कुड वॉक 3 किलोमीटर आफ्टर 7 डेज एंड नंबर ऑफ नाइट्रेट टैबलेट्स रिक्वायर्ड वॉज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली एंड जो कि एक्सरसाइज टॉलरेंस 500% से ज्यादा बढ़ गई। ओवरऑल इजेक्शन फ्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन पावर ऑफ द हार्ट वो एवरेज 10% बढ़ा, लिपिड प्रोफाइल भी गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, एचडीएल बढ़ गया, एलडीएल घट गया, सिग्निफिकेंटली कम हुआ, और ट्राइग्लिसराइड भी कम हो गए सिग्निफिकेंटली, और ओवरऑल रेशियो कम हो गया एलडीएल का। 93% पेशेंट्स कुड ओपन देयर ब्लॉक्स, हमने लगभग 464 लीजन्स हमारे पास थे और 50 इसके हमने 100% कैल्सिफाइड ब्लॉकेजेस को नहीं लिया था, 100% कैल्सिफाइड ब्लॉकेजेस थे 50, हमने उनको इसलिए नहीं लिया था बिकॉज वी थॉट दैट दे विल नॉट ओपन अप, CTOs थे, वी थॉट के वो खुलने वाले नहीं है इसलिए कंसीडर नहीं किया था। और टू अवर सरप्राइज आउट ऑफ 50 29 CTOs भी खुल गए थे, कैन यू इमेजिन, समझे आप, कैल्सिफाइड ब्लॉकेजेस 100% वो भी खुल गए थे, आई विल शो यू सम ऑफ देम। तो कैसे हुआ हमें भी बड़ा आश्चर्य था कि कैसे खुले। जब पहले एंजियोग्राम रिपीट हुई तो सुबह पेशेंट का फोन आया, जयपुर का पेशेंट था दीनदयाल समधानी, उसका फोन आया डॉक्टर साहब आज मेरी रिपीट एंजियोग्राम होने वाली है, आप मेरे लिए मेडिटेशन करना। तो हालांकि 12 बजे एंजियोग्राम था तो मुझे भी डर, तो मुझे भी लग रहा था पता नहीं खुलेगा नहीं खुलेगा, तो दो तरह का माइंड था ना, एक तो स्पिरिचुअल माइंड जो सीखा था यहां पर और एक था जो लॉजिकल माइंड था ना साइंस वाला, कैसे खुल सकता है, खुल ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, उसका 90% ब्लॉक था एलईडी में, एक और ब्लॉक था, तो मैंने कहा खुल ही नहीं सकता। तो 12:30 के आसपास फोन आया, डॉक्टर अशोक जैन थे जयपुर में, कि डॉक्टर गुप्ता मैं एंजियोग्राम किया 2 साल पहले किया था, अभी मैं देख रहा हूँ वो ब्लॉक मेरे को इतना दिखाई नहीं दे रहा है, 20-30% का लग रहा है, कहाँ गया वो ब्लॉक। मैंने कहा देखो आप समझ, आप देखो कहाँ गया, मुझे नहीं पता, आप देखो। तो फिर ही कुड रिग्रेस, इतना अच्छा ब्लॉक उसका रिग्रेशन हुआ। ऐसे फिर फर्दर एंजियोग्राम्स होते गए और कैसे खुलते गए बहुत अच्छे मेरा सर, सबके एक जैसे नहीं खुले। एक फार्मूला बड़ा सुंदर समझ में आया हमको, अगर आप 50% फॉलो करते हो, मतलब 50% नहीं करते हो तो देर इज नो रिग्रेशन ऑफ ब्लॉकेज, ब्लॉक 50% नहीं किया, 50% किया, 50% नहीं किया, 60% किया तो आपने 40% 60 किया, 40 नहीं किया तो लगभग 20% ओपनिंग हो गई 2 साल में, है ना। अगर आपने 70% किया तो 40% ओपनिंग हो गई, है ना, और 80% किया तो और ज्यादा ओपनिंग हो गई, डिपेंडिंग ऑन कितना आप एक्यूरेटली। राजयोग मेडिटेशन इज नॉट ओनली मेडिटेशन बट से अलॉन्ग विद दैट राजयोग मेडिटेटिव लाइफस्टाइल, डाइट भी परिवर्तन हो रही है, आपकी नींद भी परिवर्तन हो रही है, एक्सरसाइज भी डेली कर रहे हैं, मतलब मेडिटेटिव लाइफस्टाइल है थ्रू आउट द डे 24 आवर्स, सोने भी जा रहे हो तो भी आप मेडिटेटिव मोड में सो रहे हो, हर समय श्वासोश्वास आप सोल कॉन्शियस का अभ्यास कर रहे हो, हर कर्म में सोल कॉन्शियस। आई एम ए शाइनिंग स्टार, आई मेक द बॉडी फंक्शन। ओम माना अहम आत्मा मम शरीरम, ह्यूमन बीइंग, आई एम अ बीइंग विद द ह्यूमन बॉडी, आई मेक दिस बॉडी फंक्शन, राइट। वो मैकेनिज्म पे उन्होंने काम किया, और तो उससे उनका कैसे परिवर्तन हुआ। तो ये देखिए कुछ सम द एंजियोग्राम सेल शो, लाइट ऑफ कर देंगे सामने से तो सो दैट दे कैन सी द स्क्रीन। दिख रहा है, यू कैन सी, ओके वेरी गुड, कैन यू सी दिस, देयर इज 80% ब्लॉक इन आरसीए एंड आफ्टर 2 ईयर्स कितना सिग्निफिकेंटली ब्लॉक खुल गया, दिखाई दे रहा है आपको, सामने देख रहे हैं, राइट। हाँ जी, देखिए ये 100% कितनी डिफ्यूज डिजीज है, इट्स नॉट ऑपरेबल डिजीज, राइट। पूरी डिजीज देखिए आगे पूरा पूरा कितना, ऑलमोस्ट मोर देन 4 सेंटीमीटर लंबा ब्लॉक है ना? और देखिए रिपीट एंजियोग्राम में कितना सिग्निफिकेंटली खुल गया है ना, कितना सिग्निफिकेंटली चेंज हो गया। ये देखिए 100% कैल्सिफाइड ब्लॉक है ना, ये एक पेशेंट लीलावती जैन थी बॉम्बे की, कैल्सिफाइड ब्लॉक है और रिपीट एंजियोग्राम में कितना सिग्निफिकेंटली ओपन अप हो गई, राइट। देख रहे, एक दूसरा पेशेंट है जिसकी 100% ब्लॉक है, वो भी खुल गई है। ऐसे ही मल्टीपल ब्लॉक सारे खुले हैं, 80% और 90% ब्लॉक है, दोनों खुल गए। इसी पेशेंट को हार्ट अटैक एमआई हुआ था, 2 बार एंटीवॉल एमआई हुआ, फिर इन्फीवॉल एमआई हुआ, इंजेक्शन पेशेंट 30% रह गई थी, रिपीट एंजियोग्राम में देखें तो उसकी 45% हो गई है ना, सिग्निफिकेंटली मतलब उसकी रीजनरेशन ऑफ मायोकार्डियम हो गए हैं। एक पेशेंट और देखिए, ये 80% पेशेंट, 80 छोटे लाल पेशेंट है, रोहतक का है, 80% ब्लॉक था इसका और ये ब्लॉक देखिए खुल गया है। इसका इंजेक्शन फ्रैक्शन 20% रह गया था पोस्ट एमआई, हमारे पास जब आया तो 1 साल बाद रिपीट एंजियोग्राम हुआ, 50% हो गया। और भी पेशेंट से आप सुनेंगे कैसे उनकी इंप्रूवमेंट हुई। ये 100% कैल्सिफाइड ब्लॉक था, खुल गया है ना। कंट्रोल ग्रुप में ब्लॉकेज बड़े हैं, हमने क्या देखा, कोई भी हम इंटरवेंशन करें, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, हर्बल थेरेपी और व्हाटएवर, आप चूंकि छाल पिए, कुछ भी लें, आप लौकी का रस पी लें या कुछ भी दवाई कर लें, कोई भी, और प्राणायाम करें, शवासन करें, जितने भी आसन करें, देयर इज नथिंग विच कैन ओपन द ब्लॉकेजेस, नथिंग। किलेशन थेरेपी करें या आप वो करें, वो कहते हैं ना आज ईसीपी करते हैं, उससे ब्लॉकेज नहीं खुलते हैं। इट इज दी योर थॉट पैटर्न विच लीड टू ब्लॉकेजेस। हमने कैसे पता लगाया, बिकॉज हम बेसलाइन करते हैं, डे सेवन पे करते हैं, फिर 3 महीने पे, 6 महीने पे, फिर 1 साल पे रिपीट एंजियोग्राम करते हैं, तो हमने देखा कि उनका जो कौन कौन से पैरामीटर, साइकोलॉजिकल पैरामीटर चेंज हुए और कहां कहां उनका ब्लॉक ओपनिंग हुआ, तो विट कुड कोरिलेट एवरी ब्लॉक विद थॉट पैटर्न्स। और जैसे जैसे आप राजयोग मेडिटेशन से अपना थॉट पैटर्न बदलते हैं, आपका ब्लॉक भी बदलता जाता है, और जो पैटर्न को आप बदलते नहीं है, ब्लॉक वैसे के वैसे रहता है। अगर और बिगाड़ लेते हैं तो और बढ़ जाता है ब्लॉकेज। अब हम क्या करते हैं, एंजियोग्राम देखते हैं, पेशेंट की रिपोर्ट्स मेरे पास आती हैं, हर महीने 100 से 150 रिपोर्ट्स मेरे पास आती हैं, एंजियोग्राम देखते हैं, मुझे पता लगता है इस आदमी की नेचर कैसी है, इसका थॉट पैटर्न सोचता क्या है, इसका संबंध कैसे है अपने परिवार में, कैसे काम करता है, तो उसकी शक्ल ही बन जाती है मेरे दिमाग में ना सामने, कि आदमी कैसा होगा, कैसा बिहेव करेगा। जब पेशेंट ग्रुप में आते हैं तो हम काफी बार आइडेंटिफाई कर पाते हैं, हाँ ये व्यक्ति यही लगता है, यही वाला है, ये लगता है, ये वाला है, ये चलता है ऐसे, ये पता लगता है ये वाला व्यक्ति है। और कई बार मैं उनको नाम से बुलाता हूँ, कहते हैं आपको मेरा नाम कैसे पता, क्योंकि फोटोग्राफ से पहले आया नहीं होता, पर एंजियोग्राम मेरी बुद्धि में होता है उसका, जो पेशेंट्स आते हैं तो उससे मुझे लगता है कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा ही होगा, है ना। तो थॉट पैटर्न से आपकी, और ये पहली बार है विश्व में, पहली बार ऐसा कुछ थॉट पैटर्न से, क्योंकि हमारे डाटा बेस है 11,000 पेशेंट्स का, रिपीट है ना, 11,000 पेशेंट्स की एंजियोग्राम हमारे पास है, उनका थॉट पैटर्न हमारे पास है और उसको कोरिलेट हम कर पाते हैं। तो मतलब नथिंग कैन ओपन द ब्लॉकेज अंटिल यू चेंज योर थॉट पैटर्न्स, राइट। कहते दिल, ये तो फिजिकल दिल है, एक दिल यहां पर है, इस दिल में क्या चल रहा है, इस दिल में ये दिल बताता है। तो देखिए ब्लॉक बढ़ गए ना, और ये रिपीट, एक और एंजियोग्राम आपको दिखाता हूं, देखिए ये पेशेंट्स का, देखिए इसका 100% कैल्सिफाइड ब्लॉक था आरसीए में, ये रजनी बेन मूलचंदानी 45 ईयर्स की थी, अहमदाबाद की थी, ये कैल्सिफाइड ब्लॉकेज है, और रिपीट एंजियोग्राम 1 साल के बाद क्या देखिए कैसे खुल गया है, पूरी की पूरी टेरिटरी खुल गई है ना, देख पा रहे हैं। तो ये मैं छोड़ देता हूं। सो साइकोलॉजिकल पैरामीटर जितने भी थे, टाइप ए बिहेवियर, एंजाइटी, एंगर, डिप्रेशन, हेल्दी लाइफस्टाइल, पूरा हम लोग पूरा उसमें, हमारे क्वेश्चनर्स होते हैं उसमें पूरा देख लेते हैं, सेंसिटिव, इमोशनल नेचर, ओवरऑल फीलिंग, वेलबींग, सारे पैरामीटर सिग्निफिकेंटली चेंज हुए। कंट्रोल ग्रुप का डिफरेंस देखे तो 0-0 है, पी वैल्यू मतलब There is no sort of p-values. आप measure नहीं कर सकते हो. ऐसे ही उनका जो patient could stop smoking, alcohol, everything, and diet adherence, exercise adherence are much more than the control group. मैं आपको दिखाता हूँ, EEG दिखाता हूँ patients का. आप you know beta rhythm is with open eyes, alpha rhythm where you are close your eyes, peaceful rhythm. And theta rhythm is loveful rhythm, when you start accepting things as they are in your atmosphere. And delta rhythm is happy and blissful rhythm, when in deep sleep you get delta rhythm. एक हफ्ते पहले की देख लीजिए आप, और एक हफ्ते बाद देखिए अल्फा रिदम कितनी बढ़ गई है. विद आईज ओपन, नॉट विद आईज क्लोज. वेन यू आर एक्टिव, आईज ओपन के साथ आपकी अल्फा रिदम कितनी बढ़ गई है, देख रहे हैं आप उधर. पहले पहले अल्फा रिदम, बीटा रिदम कम हो गई है. थीटा रिदम लवफुल रिदम, लव मीन्स एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर अनकंडीशनली. पीस इज पुटिंग अ फुल स्टॉप टू द पास्ट एंड बींग इन द प्रेजेंट, दैट इज पीस. लव मीन्स एक्सेप्टिंग पीपल आर as they are in your family or in working place, wherever they are, right? And happiness is contentment, right? And bliss is going beyond this bodily world and getting absorbed in that soul consciousness with the supreme being. This is turiya avastha bhi kehte hain. So ye aapki stage hai with every whatever you are doing, just in a week if you practice sincerely. This was done by DRDO, not by me, right? Or with eyes open, you right. That means you are doing everything, and you still are soul conscious. But देखिए इसमें देखिए alpha rhythm बढ़ती चली गई, beta कम होती गई. एक हफ्ते में कम हो जाती है, एक significantly एक हफ्ते में बढ़ जाती है. theta rhythm बढ़ गई, delta rhythm बढ़ गई. Within a week, and then keeps on increasing. फिर हमने sympathetic parasympathetic activity करके देखी patients की through heart rate variability. देखिए ये low frequency power होती है ना, जो low frequency power represents sympathetic activity. When these people came to a red line, it was they were sympathetic dominance, right? They were in fight and flight mode. And parasympathetic activity was much less. Relaxation response was very poor. Within a week of practicing this program, the sympathetic activity came down, parasympathetic activity increased. Now that means they were better balanced to face the stress. And after 1 year, see this, there is a harmony. Because challenges will keep on coming. You cannot be without challenges. Challenge will always be there in life, but you face the challenge with a relaxed state of mind. That is what this meditation teaches you. That is what these people, that is how they could open their blockages. That is how they could reverse their diabetes. They could reverse their hypertension. They got rid of their extra kilos in their weight. They could reverse their psoriasis. They could reverse their GERD. They could reverse their prostatic cancer. They could reverse their asthma. And then it continued 2 years. Further improvement, further more harmony. More you practice meditation and this lifestyle, you will be a balanced person, right? Then similarly, stress hormones. Control group, there was no change. Epinephrine levels, adrenal levels. Within a week, the significant change. Not in levels, within a 6 week, significant change. Similarly, the serotonin and endorphin levels. Control group, there's no change. But within a week, significant increase in serotonin levels and endorphin levels. That is, you are having your natural morphine coming in. So pains are disappearing. You don't feel the pain. You feel very light. Similarly, we did 8 a.m. and 4 p.m. Cortisol samples in the blood and urine, both. Blood at that point of time and urine over 24 hours. Last 24 hours, whatever cortisol has come out in the urine. So what we saw was that within a week of practicing this meditation, what we teach is, and that this is a physiology, after getting up from the bed, after half an hour, you start, your adrenal gland start creating cortisol, start secreting cortisol. Depending on what type of team you have, what type of thoughts, emotions, attitudes and memories you have, up to 8 a.m. there is a peak of cortisol, right? So from, see, what about 5 a.m.? So from 5 a.m. to 8 a.m., whatever team you will have, you will make that much cortisol. And that amount of cortisol you have secreted during this period, that will decide your day. So if your cortisol is more, suppose you have a negative team, negative thoughts, negative emotions, negative attitudes, then the cortisol really will come out in such higher amount quantity, then you will have, throughout the day, you will be in hurry, jaldi, chinta, gussa, irritation, and your efficiency will go down. On the other hand, if you practice meditation in the morning, 4 a.m. and immediately after that you have meditation will trigger harmonized pituitary secretions, and then cortisol secretion will start immediately. Bliss, you will experience bliss, and then the cortisol secretion will start and you will have positive thing. Because Murli is nothing but 100% positive, godly versions, 100% positive thing. We start churning those points, godly versions. And then up to 8, 7 to 8 is a Murli, and we listen to that Murli. 8 a.m. is the cortisol surge maximum. So throughout the day you are peaceful, loveful, happy. Again 4 p.m. there is again release of cortisol. So up to from 2 to 4 p.m. again you relax. Easy. Have positive thing. Just be careful not to entertain any negative thought or negative emotions. And then 4 to 10 is really very relaxed. Very peaceful, very loveful, very happy. And efficient. And then you will have very good sleep also. So this is how you manage your day. Right? This is what we teach our patients. And this you can see yourself. That within a week, the cortisol levels, 8 a.m., 4 p.m. samples, they significantly improve. Right? Decrease. Both. And then keep on decreasing. And then your life becomes much more happier. Right? And similarly, insulin levels. What is happening is because cortisol secretion is more, but by doing this meditation, decreasing cortisols, because cortisol mobilizes your glycogen from the liver, and then in turn insulin is released from the pancreatic cells, beta cells, and but the stress is continuous, so glycogen is coming out, glucose is coming out, you are making more insulin, you feel more hungry, obesity comes in, HDL decreases, triglycerides increase, dyslipidemia, obesity, insulin control, insulin resistance comes in, and blood pressure, high insulin level leads to high blood pressure, right? So you have metabolic syndrome coming in, right? That is how the disease comes in. And what we saw here is patients on insulin, 60 units, 80 units, we could stop their insulin within a week. And still their diabetes was under control. People came to us with 350, blood sugar of 350, 400. And they started on third day, fourth day, with 60 units of insulin, the sugar was coming down to 60, which they never experienced. And then we will decrease the units, and by sixth day, they're off insulin. Without any insulin, that sugar is under control. This is not a miracle, right? But it happened. Number of patients, right? Because insulin sensitivity improves. And they could regress their weights. Like they said, khatam, normal ho gaye. HDL aaj unka, mera khud ka 28 tha, abhi 56 hai. My triglyceride used to be 692 in 1996-97. Ab mera hamesha below 80 rehta hai, without any medication. अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मैं 5 मिनट बता देता हूँ. ये तो आपको पता ही है कि कैसे है कि इंसान को मरने के बाद क्या कहते हैं, बॉडी को लेके जाओ, है ना. एक एक्सीडेंट का पेशेंट आता है, उसको कहते हैं बचाने की कोशिश करते हैं, बचा नहीं पाते, कहते हैं टेक द पेशेंट, है ना. आई एम सॉरी, वी ट्राइड अवर बेस्ट, टेक द पेशेंट. नो ऑर्गन इज फंक्शनिंग. बट इसकी इच्छा थी कि मरने से पहले अगर मैं किसी को, कोई पेशेंट और है जिसको डायरेक्ट कार्डियोमायोपैथी है, EF इजेक्शन फ्रैक्शन ओनली 10%, he needs a cardiac transplant. Iski agar we can do tissue matching, we can take out the heart from here and transplant there, it starts functioning. Similarly, kidney, liver. So what makes the organ function? It is the soul. It is the life force which makes the organ function. So, ye main chhod deta hu. Human being is a continuous spiritual, mental, physical energy. Not only physical energy, but spiritual energy, mental energy and tino chi. Or health is nothing but dynamic process of हार्मनी एंड फ्लो ऑफ ऑल द थ्री एनर्जीज. एक बहुत सुंदर बात जो समझने की, ओनली सोल एंड फ्यू मेमोरी सेल्स इन द ब्रेन आर कंटिन्यूस विद लाइफ. रेस्ट मोर देन 99.8% सेल्स आर चेंजिंग एवरी 3 मंथ्स टू 2 ईयर्स. आपकी पूरी एंडोथीलियम बदल रही है हार्ट की, आर्टरी की, विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स. स्किन आपकी चेंज हो रही है, नीडल्स आपके बदल रहे हैं, आपकी पूरी GI ट्रैक्ट बदल रही है, पूरा हार्ट 2 साल में बदल रहा है, पूरी बोन्स 2 साल में बदल रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन योर टीम. अगर आप अपनी टीम पॉजिटिव कर दें, आई एम अ बीइंग, सोल कॉन्शियस हो जाए और अपनी टीम को पॉजिटिव कर दें 3 महीने के लिए सिर्फ, तो आपकी नई वाली एंडोथेलियम बनने वाली ना आर्टरी के अंदर, उसमें ब्लॉक होगा ही नहीं, या 10-20% ही ब्लॉक होगा. आपका लीवर, फैटी लीवर है, आपका फैटी लीवर ठीक हो जाने वाला है. 1 ग्राम लीवर में, एक ग्राम लीवर पैनक्रियास में फैट जमा होता है ना, डायबिटीज हो जाती है. क्योंकि 12 लाख इंसुलिन, 12 लाख ही सेल होती है, बीटा सेल्स, वो उसका वजन 1 ग्राम ही होता है, और 1 ग्राम फैट चला गया, बस आपको डायबिटीज हो जाती है, तो आप उन सेल्स में से निकाल देंगे ना, फैट को बाहर कर देंगे, आपकी डायबिटीज रिवर्स हो जाती है, आपका एचबीए1सी 13 से सीधा 6 आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे पेशेंट इनको रिवर्स हो गए। तो आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, दैट इज द पावर ऑफ योर माइंड, दैट इज पावर, विल पावर, राइट। एक चीज और है, योर बॉडी इज मेड अप ऑफ 80,000 बिलियन सेल्स, 70 to 80,000 बिलियन, और हर सेल में एक सेकंड में 1 लाख रिएक्शन होती है, एवरी सेल 100,000 रिएक्शन इन 1 सेकंड, और इतने सारे फ्री रेडिकल्स भी बनते हैं, दे आर ऑल्सो वॉश्ड आउट इन 1 सेकंड, लेस देन ए सेकंड, बिकॉज अवर हार्ट बीट्स एवरी सेकंड मोर देन एवरी, एक बार तो एक सेकंड में बीट करता है 70 per minute, राइट। किंतु जब आप जल्दबाजी करते हैं ना, टाइप ए बिहेवियर, तो आपकी सेल्स में 120,000 रिएक्शन होती है लगभग, वो टॉक्सिन एक्स्ट्रा 20,000 सेल्स के टॉक्सिन साफ नहीं होते हैं, वो सेल्स में जमा हो जाते हैं फ्री रेडिकल्स, सेल्स स्लो हो जाती है, चिंता करते 140,000 रिएक्शन हो जाती है, इरिटेट होते हैं 160,000 रिएक्शन हो जाती है, गुस्सा करते हैं 200,000 रिएक्शन हो जाती है, और ज्यादा करते हैं, कुछ उदास हो जाते हैं, दिलचस्प हो जाते हैं, तो और ज्यादा हो जाते हैं। दैट इज हाउ अवर सेल्स बिकम इल, दे आर नॉट एबल टू मेक प्रॉपर इंसुलिन, दे आर नॉट एबल टू मेक प्रॉपर हार्मोन्स, प्रॉपर एंजाइम्स, एंड दैट इज हाउ वी डेवलप डिजीज इन दोज सेल्स, दे डाई अर्ली और दे आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग दैट हार्मोन और एंजाइम और केमिकल इन द राइट वे, एंड दैट इज हाउ वी डेवलप द डिजीज। ऑन द अदर हैंड, इफ यू डू मेडिटेशन, एपीसीडी, आत्मा परमात्मा कनेक्शन ड्रामा, मैं आत्मा परमात्मा की संतान, मेरे संबंध उसके साथ है, वहां से मेरा वर्टिकल कनेक्शन, बैटरी वहां से चार्ज होती है, नीचे जितने भी लोग हैं ना, पति पत्नी, माँ बाप, बच्चे, भाई बहन, ऑफिस में काम करने वाले, हॉस्पिटल में काम, सब मेरी बैटरी डिस्चार्ज करने वाले हैं, डिस्चार्ज समझते हैं? जो आत्मा के पास एनर्जी ना, पवित्रता की, शांति की, प्रेम, सुखानंद शक्तियों की, वो खत्म करने वाले हैं, चार्ज सिर्फ ऊपर से होती है। मेरी दादी जी, मेरी दादी जी थी ना चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी, दादी प्रकाशवाणी, वो कहती थी गुप्ता जी मुझे बताओ इंचार्ज की डेफिनेशन क्या होती है। मैं 12 साल उनका पर्सनल फिजिशियन रहा, दादी सुबह सुबह कई बार मुझसे कुछ पूछती थी ऐसे, जस्ट टू मेक मी थिंक अबाउट थिंग्स, कि इंचार्ज कैसे कहते हैं। मैं दादी जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उसको इंचार्ज कहते हैं। तो दादी कहती है अच्छा, नहीं वो इंचार्ज का मतलब क्या होता है, जो इन रह के अपने आप को चार्ज करता रहे, इन रह के अपने आप को पावर हाउस से चार्ज करता रहे, अंदर ज्ञान अर्थात सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, सच्चा प्रेम, अतिन्द्रिय सुख, आनंद और शक्तियों से भरता रहे, और अपनी बुद्धि को, मन को, संस्कार, हैबिट्स को नरिश करता रहे, अपनी आंखों को, नाक, कान, मुख को, इन पांचों कर्मेंद्रों को नरिश करता रहे, अपनी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को, हार्ट को, इम्यून सिस्टम को, लंग्स को, पेट को, सब ऑर्गन्स को नरिश करता रहे, और जो भी उसके साथ रहते हैं घर में या बाहर ऑफिस में, सबको भी पवित्रता, शांति, प्यार, खुशी बांटता रहे, उसको बोलते हैं इंचार्ज। आप सभी इंचार्ज हैं या आउटचार्ज हैं? जो आंखें दिखाते हैं, गुस्सा करते हैं, वो आउटचार्ज हैं, ठीक है। अभी क्या बनेंगे, जो इंचार्ज बनेंगे हाथ उठाओ, यस राइट, इंचार्ज बनेंगे ना, तो ये हमें करना। जब इंचार्ज बन जाते हैं तो क्या होता है, शांति आती है ना, बींग इन द प्रेजेंट, पुटिंग ए फुल स्टॉप टू द पास्ट एंड बींग इन द प्रेजेंट, शांति, तो आपकी 80,000 रिएक्शन। तो एवरी सेकेंड यू आर वॉशिंग आउट 20,000 फ्री रेडिकल्स, राइट? नहीं, दैट इज हाउ यू से पीस हील्स। लव मीन्स एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर विदाउट एनी कंडीशंस, यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग थिंग्स एज दे आर, तो क्या होता है, 60,000 रिएक्शन हो जाती है एवरी सेकेंड, यू आर पास, यू आर गेटिंग रेड ऑफ 40,000 फ्री रेडिकल्स। नहीं, दैट इज वाई से ट्रू लव हील्स। हैप्पीनेस मीन्स कंटेंटमेंट, तो हैप्पीनेस मीन्स 40,000 रिएक्शन हो जाती है, तो एवरी सेकेंड यूर वॉशिंग 60,000, दैट इज वाई से हैप्पीनेस हील्स। ब्लिस मीन्स ओनली 20,000 रिएक्शन हैपनिंग इन 1 सेकेंड, सो 80,000 रिएक्शन टॉक्सिन वॉशिंग आउट, राइट, दैट इज वाई से ब्लिस हील्स। यस, दैट इज हाउ यू हील द बॉडी, दैट्स ए नेक्स्ट पैराडाइम फॉर मॉडर्न मेडिसिन, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है, और सिंपल प्रिंसिपल ये है कि स्ट्रेस मीन्स प्रेशर डिवाइड बाई कोपिंग एबिलिटी, तो वेदर स्ट्रेस एक्सीड दी कोपिंग एबिलिटी, देन यू हैव फील स्ट्रेस। इंटरनल प्रेशर्स हो सकते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर्स हो सकते हैं, द ओनली मेथड टू इंक्रीज योर इंटरनल प्रेशर, इंटरनल स्ट्रेंथ इज मेडिटेशन। एंड वॉट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन इज कनेक्शन विद द ट्रूथ, सत्य से जुड़ना। सत्य क्या है? एटर्नल एंड अनचेंजेबल। तो वॉट इज द ट्रूथ ऑफ ह्यूमन बींग? ह्यूमन प्लस बींग। ह्यूमन मीन्स बॉडी, and being means life force, outer self and inner self. जब आप आउटर सेल्फ कॉन्शियस होते हैं तो बॉडी कॉन्शियस, सोल कॉन्शियस, मेटीरियल कॉन्शियस, अनस्टेबल इनसिक्योरिटी और ईगो, इनसिक्योरिटी से पांच विकार जन्म लेते हैं, काम काम विकार, लस्ट, किसी देह की तरफ आकर्षण, अकल या शक्ल पे आकर्षण हो जाता है, तो इनसिक्योरिटी से कॉज इज इनसिक्योरिटी है ना, क्रोध, मेरे कंफर्ट जोन में जो आता है उसके उसके क्रोध आता है, लोभ, अपने कंफर्ट जोन में आई वॉन्ट टू हैव मोर, अटैचमेंट, क्या चीज है, मेरे कंफर्ट जोन में जो लोग मेरे हैं वो मेरे पास ही रहें, मेरे साथ ही रहें, और ईगो, जो इकट्ठा किया उस पर ईगो हो जाती है, और इसी से हमारी नेगेटिव मेंटल टेंडेंसीज पैदा होती हैं, ये मैं इसमें नहीं जाता हूं, इसी को स्ट्रेस कहते हैं, इसी से हम रॉन्ग मूड लीड्स टू रॉन्ग फूड, बिटरनेस मन में होती है खाते मीठा है, वी कंपल्सरी टेकिंग स्वीट, ड्राईनेस यहां होती है फ्राइड यहां खाते हैं, है ना, बोरिंग यहां महसूस करते हैं हॉट एंड स्पाइसी यहां से खाते हैं, भले डायबिटीज हो, भले ब्लड प्रेशर हो, वी डोंट बदर, कहते खा पी के मरेंगे ना, मरना तो है ना, ऐसा बोलते नहीं बोलते, डॉक्टर्स को ज्यादा बीमारियां होती हैं, डॉक्टर्स आर डाइंग 10 इयर्स यंगर देन द जनरल पॉपुलेशन, दे नो बट डू नॉट प्रैक्टिस, राइट, तो ऐसा आदमी को नींद अच्छी नहीं आती है, लेट टू बेड लेट टू राइज, और ऐसा आदमी एक्सरसाइज भी नहीं कर पाता है, गलत करता है तो गलत करता है, ऐसा आदमी चाय कॉफी पीता है, एडिक्शन में जाता है, और ऐसे आदमी को बीमारियां होती हैं, इसकी वजह आप सोल कॉन्शियस हो जाए तो क्या होगा, सोल कॉन्शियस होंगे तो आपके अंदर सातों एनर्जी आत्मा की आपके अंदर आ जाएंगी, और जब इन सातों एनर्जी से भरपूर होकर काम करेंगे तो आपके अंदर वैल्यूज आ जाएंगी, और उससे आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, और उससे आप प्रॉपर फूड, मूड एंड फूड, है ना, ये आदमी खाने के लिए जी रहा है, ये आदमी जीने के लिए खाएगा, और ये आदमी प्रॉपर टाइम पर अच्छी नींद आएगी इसको, और प्रॉपर एक्सरसाइज करेगा, और इसको कोई स्मोकिंग करने की आवश्यकता नहीं, शराब पीने की आवश्यकता नहीं, ये हेल्दी हैप्पी रहेगा, तो मैं इसको सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक ही व्यक्ति जो आपको हील कर सकता है सिर्फ आप हैं, डॉक्टर्स आपको गाइड कर सकते हैं, पेरेंट्स आपको मदद कर सकते हैं, रिलेटिव्स आपकी मदद कर सकते हैं, और भगवान आपकी हजार गुना मदद कर सकता है, हेल्दी मीन्स स्वस्थ, स्वस्थ मीन्स सोल कॉन्शियस, और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको छोड़ देता हूं, तो ये मन ही हमारा सूक्ष्म शरीर है, और ये हमारी सात एनर्जी आत्मा की है, और ये आत्मा की सातों एनर्जी, हम आत्मा की सात एनर्जी मन के माध्यम से, टीम के माध्यम से बॉडी को मिलती है, हर एनर्जी बॉडी के सेल के लिए आवश्यक है, तो एक एक एनर्जी आवश्यक है, इसको मैं डिटेल में, टाइम पूरा हो गया, सिर्फ 4 बजे जब आप उठ करके आप अपने को आत्मा समझ के परमात्मा की याद में रहें, तो एनर्जी आपके अंदर आत्मा में आएगी, और आप टीम पॉजिटिव रखें, मुरली सुन लें तो 8 बजे तक आपकी टीम पॉजिटिव से प्रोग्राम करते हैं, 7 दिन का इन हाउस प्रोग्राम होता है, और ये प्रोग्राम हमने प्राइमोडियल प्रिवेंशन भी करें, स्कूल्स कॉलेजेस में भी करते हैं, और प्राइमरी प्रिवेंशन फॉर पीपल हु आर रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज, अभी तो हमने बताया डायबिटीज का रिवर्सल, ओबेसिटी का रिवर्सल, फैटी लिवर डिजीज का रिवर्सल प्रोग्राम भी कर रहे हैं, अभी तक लगभग 11,000 पेशेंट 181 ग्रुप्स में कर चुके हैं, और इसमें मोर देन 2,000 रिपीट एंजियोग्राम्स हमारे पास हैं, तो टेक होम मैसेज यही है, फर्स्ट थिंग इज स्पिरिचुअल केयर, जो भी काम करो आप सोल कॉन्शियस होकर करो, इनर सेल्फ कॉन्शियस होकर करो, इसके लिए सुबह उठ के 4 बजे हम ब्रह्म मुहूर्त में उठो, आधा घंटा मेडिटेशन करो और आनंद की स्थिति का अनुभव करो, तो आपका ये हार्मोनल पिट्यूटरी सर्च हार्मोनाइज हो जाएगी, 8 बजे तक चुप रहो, टीम को पॉजिटिव रखो, उसके लिए मुरली सुन लो परमात्मा के महावाक्य, तो आपकी एडिनल सर्च हार्मोनाइज हो जाएगा, और फिर बॉडी के लिए फिजिकल केयर, ज्यादा मात्रा में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड, स्प्राउट, अच्छा लाइव फूड खाओ, प्रॉपरली कुक्ड फूड भी खाओ, रॉ फूड भी खाओ, बैलेंस रखो, टाइम पर खाओ, रात का खाना 7 बजे के पहले खा लो, और सुबह शाम सैर कर लो, सनराइज के बाद 45 मिनट्स वॉक कर लो, और 10 बजे सो जाओ, 4 बजे उठ जाओ, प्रॉपर यूज मेडिकेशन, एंजियोप्लास्टी बाईपास भले करा लो, पर याद रखो कि आपको ये अल्टीमेट ट्रीटमेंट नहीं है, अल्टीमेट ट्रीटमेंट इज योर चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल, तो आपने बहुत पेशेंस सुना, थैंक यू सो मच, मैं चाहूंगा एक दिल वाले आ जाए, नरेश मंडारी आ जाओ, 2 मिनट में अपना अनुभव सुनाएंगे ना, अभी तो आज नरेश मंडारी माइक ले लो, हाँ जी,
मीनूल आई इन्वाइट डॉक्टर अशोक मेहता जी, ही फेलिसिटेड अवर चेयरपर्सन, सो प्लीज कम ऑन द
स्टेज,
ओम शांति, मैं एक आत्मा हूँ और शरीर का नाम है नरेश मंडारिया, मैं बम्बई से आ रहा हूँ, मेरी उम्र 74 इयर्स है, और मैं 2007 में बेंगलोर ऑफिस में, मैं एशिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कंसल्टिंग कंपनी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में डेप्यूटी जनरल मैनेजर की पोस्ट में रिटायर हुआ हूं। तो 2007 में जब मैं मेरी ऑफिस में बेंगलोर में बैठा था तो मेरे बाजू वाले ऑफिस के बाजू वाली एक हार्ट हॉस्पिटल में 1000 रुपये में 4 टेस्ट हो रहे थे, तो मैं वहां टेस्ट कराने चला गया। तो वहां एक 2D इको का मेरा टेस्ट किया गया, तो जिसमें डॉक्टर ने बताया कि आपका हार्ट सिर्फ 27% पंपिंग कर रहा है, तो आप ऊपर चलिए, आपका एंजियोग्राफी करेंगे। तो मैं डर गया, मैं बोला मुझे नहीं कराना है, मैं आप मुझे रिपोर्ट दे दीजिए, मैं बम्बई का रहने वाला हूँ, बम्बई जाऊंगा तो वहाँ सेकंड ओपिनियन लूंगा। तो वो रिपोर्ट लेके मैं बॉम्बे आया, बॉम्बे में भी मुझे इतना विश्वास नहीं रहा, तो मैं सूरत गया। सूरत में महावीर हॉस्पिटल में मैंने मेरा एंजियोग्राफी कराया, तो उसमें LAD में 90%, SCX में 80%, D1 में 80%, RCA में 60% और OM 100% ब्लॉक मिला। तो डॉक्टरों ने मेरा मुझे बोला कि आपका इमीडिएटली बाईपास करना पड़ेगा। मैं बोला मुझे नहीं कराना है, आई नो ए डॉक्टर इन आबू, डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, सो आई विल गो टू हिम एंड आई विल गेट ट्रीटेड देयर। तो फिर मैं डॉक्टर साहब के ओर कांटेक्ट कर रहा था, डॉक्टर साहब मुझे मिल नहीं रहे थे। इतने में मुझे पता चला कि डॉक्टर साहब हमारे बम्बई में ही डॉक्टर हमारी दादी प्रकाशमणि जी को लेके आए हैं और उनकी ट्रीटमेंट में है। तो मैं उनके पास चला गया, उनको मेरे रिपोर्ट दिखाए और डॉक्टर साहब ने बोला कल से तुम तुम्हारे युगल को लेके हॉस्पिटल में रोज 2 घंटा आया करो और तुमको पूरा सिखाएंगे कैसे हार्ट ब्लॉक खुलना है। सो इसके बाद में 45 डेज कंटिन्यूअसली मुझे और मेरी वाइफ को 1-to-1 डॉक्टर साहब ने पूरा एजुकेशन दिया कि व्हाट इज हार्ट, उसमें ब्लॉक कैसे बनते हैं, उसको कैसे खोला जाता है, क्या एक्सरसाइज करना है, क्या खाना है, क्या पीना है। तो उसके बाद में मैंने वो चीज फॉलो किया। 2010 में मैं जब फिर से डॉक्टर साहब को दिखाने गया यहाँ ट्रोमा हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि आपका फिर से एंजियोग्राफी कराओ। तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि डॉक्टर साहब अभी यदि मैं कराऊंगा और कुछ निकला तो डॉक्टर्स मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं एक डॉक्टर ऐसा देता हूं कि जो सिर्फ आपका CT एंजियोग्राफी करेगा, वो आपको किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करेगा। तो फिर मैं उस डॉक्टर के पास गया, मेरा एंजियोग्राफी कराया, तो वो डॉक्टर साहब 10 मिनट तक मेरा रिपोर्ट देखता रहा पुराने और आगे के। तो उसमें उन्होंने बताया मुझे कि मेरा LAD 100% चला गया है, LCX 100% चला गया है, D1 के अंदर में सिर्फ 15% बचा था, RCA में सिर्फ 5% बचा था, OM 100% ब्लॉक था, लेकिन सारी कोलेटरल्स खुल चुकी थी। सो डॉक्टर साहब ने मुझे बोला कि ये तो तुम्हारा अभी हार्ट में कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। और इसके बाद में जब 2011 में फिर डॉक्टर साहब के पास में आया, डॉक्टर सतीश गुप्ता जी के पास में, तो उन्होंने यहाँ ट्रॉमा हॉस्पिटल में मेरा खुद ने मेरा 2D ईको टेस्ट किया और मेरा हार्ट उस टाइम पे 27 से लेके 63% तक बढ़ चुका था। सो डॉक्टर साहब ने बोला कि यू आर एज यंग एज 40-year-old मैन। एंड उसके बाद में डॉक्टर साहब ने मुझे ऑफर किया कि आप पेशेंट्स की सेवा में आओगे। तो उसके बाद में 2008 की साल से अभी तक जितने भी कैट के प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें डॉक्टर साहब के साथ में मैं सेवा में आता हूं, और लास्ट ईयर हमने 5वें प्रोग्राम में डॉक्टर साहब के साथ में सेवा किए हैं।
जगदीश भाई पटेल उंझा से हैं, मैं सिर्फ उनके बारे में आपको बता देता हूँ। ही इज ए इंडस्ट्रियलिस्ट और ये हमारे पास 2010 में आए थे। इनके डायबिटीज है 35 साल से, यूज टू बी 350-400 ग्राम रहती थी हमेशा, 40 यूनिट्स इंसुलिन पे थे और इनकी 5 ब्लॉक्स थे, LAD में था, LCX में था, RCA में था। एंड बिकॉज ऑफ डायबिटीज बहुत ज्यादा थी तो ही कुड नॉट बी ऑपरेटेड, तो इन्होंने फिर जो है यहाँ हमारे प्रोग्राम में आए। और 3 महीने इनका वजन 102 ग्राम, 102 किलो था तभी, और हम 3 महीने में इनका वजन 85 हो गया था, शुगर कंट्रोल 40 यूनिट्स इंसुलिन बंद हो गई थी और इनका इजेक्शन फ्रैक्शन 25% था, 55% हो गया था और इनका वजन 85 किलो हो गया था। और तब से फिर उस प्रोग्राम से लेकर 99 प्रोग्राम अब तक हो गए, तब से हर प्रोग्राम में यही खाना बनाते हैं, खाना बनाना नहीं आता था इनको, तब से लगातार नॉन स्टॉप। और इनका वजन अभी 52 किलो है, सिर्फ 52 किलो। एनर्जी कितनी है आपकी?
एनर्जी तीन लोगों जैसी एनर्जी है मेरी।
और ये अभी अंबाजी में वहां पे 1970 स्टेप्स हैं, वहां 1.25 घंटे में चढ़ गए उसके ऊपर, और 14 साल से एक बार भी किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा, और डायबिटीज भी कंट्रोल्ड में है, मतलब 150 पीपी रहता है, और एंजियोग्राफी रिपीट एंजियोग्राम ब्लॉक खुल गए एंड इज हैप्पी एंड हेल्दी. थैंक यू.